cocaína.
Só com o eca, né?
Oi, custo caía, né?
Quanto está teu?
कुछ कहिए ना कुछ ते आखो
कोई गाल करो ना जी
अस्सलाम वालेकुम सामीन प्रोग्राम है कुछ तो कहिए मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज अजीज और मेहमान हमारे ऐसे हैं कि आप बस तड़प जाएंगे जब मैं उनका नाम बताऊंगी इसलिए तड़पेंगे कि आपको जब ये पता लगेगा कि ये प्रोग्राम मैंने पहले से रिकॉर्ड कर लिया है मैं हफ्ते को मौजूद नहीं होंगी लेकिन वादा रहा कि हम लाइव प्रोग्राम भी उनके साथ जल्दी करेंगे ये फनकार कौन है लीजिए एक झलक सुनिए मेरा ख्याल है आप में से बहुत से पहचान गए होंगे अभय रुस्तम सोपुरी को बहुत ही मारूफ शख्सियत हैं बहुत ही मारूफ फनकार हैं कश्मीर के और सिर्फ कश्मीर के नहीं बल्कि बैन अल-अक़वामी तौर पर बहुत मशहूर हैं हमारे मेहमान अभय रुस्तम सोपुरी अबे सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि ये जो रुस्तम व सोहराब की रिवायत है ईरानी ये आपके खानदान में कैसे आई
जी एक्चुअली जब मेरे फादर साहब और मदर ने हम लोगों के नाम रखे तो नाम ऐसे ही रहे और इसी स्टोरी पे ही इनफैक्ट बेस हुआ क्योंकि मेरे बड़े ब्रदर का नाम सोहराब है
जी जी
और फिर मैं जब पैदा हुआ तो मेरा नाम रुस्तम रखा गया एक सोच ये थी कि नाम ऐसे रखे जाएं जो एकदम डिफरेंट हो कहीं पापा मम्मी की शायद सोच में रहा होगा कि ये म्यूजिक वगैरह में कैरियर अपना ले सकते हैं तो एकदम हटके नाम हो जो हमेशा रिकग्नाइज्ड रहे एक वो भी था और बहुत डिफरेंट नाम लोगों ने सोचा क्योंकि है तो पर्शियन नेम्स हैं और है भी अपनी एक बहुत एक लेजेंड स्टोरी है
वैसे तो खैर ज़ाहिर फारसी कश्मीर में ज़बान की हद तक तो ये रिवायत मौजूद है पूरी तरह लेकिन क्योंकि आपका म्यूज़िक से ताल्लुक़ है तो इसलिए मैंने मुझे थोड़ा सा ये लगा कि मुख्तलिफ लगता है नाम मूसीकी के मुकाबले में
हाँ।
तो कुछ ईरानी म्यूज़िक का भी असर है आपके ख़ानदान पे या सिर्फ नामों का
देखिए हमारा जो ट्रेडिशन है फैमिली का वो शैविज्म परंपरा से होते हुए सूफी परंपरा में ढला तो हमारा जो घराना है वो है सूफियाना घराना
जी।
कश्मीर का और एसेंशली जहाँ पे कि बड़े बड़े जो हमारे मास्टर म्यूजिशियंस फैमिली के रहे हैं वो संत भी रहे हैं, सूफी सेंट्स भी रहे हैं, और बहुत एक ऊपर वाले का एक ऐसा जिसे आप कहें कि ब्लेसिंग थी कि काफ़ी ताकत थी उनमें स्पिरिचुअली भी, पूरे सूफी फलसफे को समझा और म्यूजिकली उसको लिया, क्योंकि हमारी जो म्यूजिकल परंपरा एसेंशली रही है वो सूफी परंपरा ही रही है, और उस परंपरा में जो हमारे संस्कृत है वो भी है लेकिन पर्शियन भी बहुत सारा है, और कुछ ऐसी कंपोजिशंस हैं जो जब हम क्लासिकल हमारी फैमिली में इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि 300 साल से ज़्यादा की हिस्ट्री है म्यूजिक की हमारे फैमिली में, और जो क्लासिकल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है वो जो आया वो मेरे जो ग्रैंडफादर हैं उनके ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था क्लासिकल म्यूजिक हमारी फैमिली में, तो 5 जनरेशन से क्लासिकल म्यूजिक हमारी फैमिली में रह चुका है, लेकिन जो सूफी परंपरा का एक जो कंपोजिशन हमारे पास है वो इतना एक रेपोटियर है जिसमें कि ऐसे तराने भी हैं जो नॉर्मली हमें सुनने को नहीं मिलते, जैसे अगर आप कहें तो एक लाइन मैं आपको गा के सुना सकता हूँ, यहाँ पे
एक लाइन से ज्यादा अगर आप मुझे सुनाएं।
जी जी जी, ये बहुत ही डिफरेंट जैसे तराना कंपोजिशन है, बहुत डिफरेंट है। अगर हम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में आते हैं जो हमारे यहाँ तराने हैं वो बहुत डिफरेंट है, लेकिन तिलाने हमारे सूफियाना के बहुत खूबसूरत हैं और बहुत डिफरेंट टेम्पो में भी ऑपरेट करते हैं, स्लो टेम्पो में भी ऑपरेट करते हैं, हालांकि जो क्लासिकल म्यूजिक के तराने होते हैं वो कंक्लूडिंग आइटम होता है रिसाइटल का एक वोकलिस्ट के लिए। अब इसमें कंपोजिशन में आपकी नजर पेश कर रहा हूँ, दरताना दरताना दरआ दोस्त दरआ दिल बरा जाने मन, दरताना दरताना दरआ दोस्त दरआ दिल बरा जाने मन, दरताना दरताना दरआ। तो इस तरीके से ये ऑपरेट करता है, और इसमें हमारे जो कंपोजिशंस हैं, अब ये तराना जो है इसमें एक जो कपलेट है वो फारसी कपलेट भी है, तो ऐ नसीमे सुबह हो दम यारम कुजास्त गम जिहत बेगुजश्त दिलदारम कुजास्त दरताना दरताना दरवा।
वाह वाह, मैं यह कहूँगी कि अगर आप थोड़ा सा वो भी बताएं हमें कि क्लासिकल म्यूजिक का उसे मुख्तलिफ है।
जी देखें, एक कंपोजिशन है, ता नूम तदार दीम दीम, ता नूम तदार दीम दीम, तन देर ना तदार दीम दीम, तनूम ता नूम तदार दीम दीम। अब ये हमारे क्लासिकल का है और ये टेम्पो में ऊपर उठता है, लेकिन एक मेरे ग्रेट फ्रेंड फादर साहब का, पंडित संसार चंद सोपोरी जी का एक तराना है, एकदम डिफरेंट है, और इस तरीके के जो अल्फाज हैं और इस तरीके के जो कंपोजिशनल स्ट्रक्चर्स हैं ये हमें कश्मीर के बाहर सुनने को नहीं मिलता है। जैसे दीम ताना ना तादारे दानी, दीम ताना ना तादारे दानी, नादिर दानी तुम दिर दानी, ता अल्लाह दीन ताना ना तादार दानी। अब जो ये वाला एक जो स्ट्रक्चर है तो ये बहुत खूबसूरत चीज है हमारे परंपरा ट्रेडिशन की।
अबे ये बताइए मुझे कि एक ऐसा नौजवान 300 साल की जिसके पीछे म्यूजिक की ट्रेडिशन हो, उस पर एक बड़ा प्रेशर भी आ जाता है, बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर कि आप अपने फ़न को जोड़ना भी चाहते हैं जो मॉडर्न म्यूज़िक है जो वेस्टर्न म्यूज़िक है इसके साथ, लेकिन आपको अपनी रिवायत को भी रखना है कायम, क्योंकि मैंने आपको देखा है कि आप अपने वालिद के साथ भी गाते हैं स्टेज पर, तो क्या कभी डांट वांट पड़ती है जब आप इस कोशिश में, कभी ऐसा हुआ कि बड़ों की तरफ से डांट पड़ी हो कि कुछ ठीक नहीं कर रहे या खुश हैं वो?
देखिए आजकल एक बड़ा ही लोग सोचते हैं कि एक बच्चा शायद जहनी तौर पे बहुत डाउन हो जाता है जब उसे डांटा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। एक बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो तभी होती है जब वो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से गुजरता है। और हाँ, हमें जैसे आप कहें कि कहीं पे भी सख्ती ऐसी नहीं बरतनी है कि बच्चा डर के रह जाए और किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में चला जाए, ऐसा नहीं। लेकिन सख्ती ऐसी होनी चाहिए जो उसे एक रास्ता सामने खोल सके उसके लिए। अगर डिसिप्लिन है तो सख्ती तो रहेगी ही रहेगी, और उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और जब हम बड़े होते हैं तब रियलाइज होता है कि अगर ये नहीं हुआ तो हमने क्या मिस किया होता।
अगर बड़े होकर बच्चा अभी जैसे निकल आए तो फिर तो बहुत से माँ बाप कहेंगे काफी डांट डपट करनी चाहिए, अगर इतना अच्छा बच्चा हो बन सकता है तो।
एक्चुअली जैसे मैं आपको बताऊँ, पापा बहुत सॉफ्ट है कम्पेयर टू मम्मा, मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट रही है।
अब एक ईश्वर की कृपा ये है कि एक ये पहली जनरेशन का तो है नहीं संतूर नवाजोर या म्यूजिशियन, अब इसके पीछे तो पूरी एक हिस्ट्री है, एक लीनेज है, और बहुत ही रिच लीनेज है। ये नाइन्थ है म्यूजिशियनों के परिवार का बच्चा, और जिसमें संतूर नवाज ही रहे हैं, सारी नाइन्थ जनरेशन ही यही काम करती रही हैं। तो उससे दो चीज़ें हो जाता है, एक तो ये है कि आदमी का तखैल का जो इमेजिनेशन का जो क्रिएटिविटी जिसे कहिए उपज का जो कैनवास होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। और दूसरा ये है कि जो सटलिटी एक अंडरस्टैंडिंग रहती है म्यूज़िक की बारीकियों की, वो आदमी में एक इनहेरिटेंस के तौर पर आ जाता है। फिर उसको अपनी रियाजत से तराशना, उसको अपनी क्रिएटिविटी से तराशना, अपने इल्म से हुनर से तराशना, ये इस बच्चे ने किया हुआ है। बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही डिवोटेड, बहुत ही ऑनेस्ट। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा अच्छा रहे, खूब डेडिकेटेड रहे, डिवोटेड रहे, और अपनी नेशन के लिए काम करता जाए।
वो पुराना गाना है वो कश्मीर का,
मर मंदे हामदन वारो करसम्यो न्याय अंधे, मर मंदे हामदन वारो करुम्यो न्याय अंधे, मर मंदे हामदन वारो करुम्यो छम पाम दिवा काम दिवै हा जाना वारो, सन्हा छम पाम दिवा काम दिवै हा जाना वारो, तनवो तुम रिवा।
मुझे लगता है अगर मैं अपनी दादी को देखूं तो मेरी दादी बहुत स्ट्रिक्ट रही हैं, और आज भी उनका एक कमांडिंग पोजीशन है, और मेरे दादाजी हमेशा सॉफ्ट रहे हैं। आज भी वो बात करेंगे तो आपको देखते ही लगेगा, आवाज़ सुनते ही लगेगा कि ये कोई सूफी पीर ही हो सकते हैं जो ऐसे बात करेंगे। तो वो है, लेकिन जब सिखाने की बात आती है तब बहुत स्ट्रिक्टनेस है। मुझे एक इंसिडेंट भी याद है, एक बारी पापा अमेरिका से कॉन्सर्ट देके वापस आए थे, और दादाजी रात को बैठे पापा के साथ, तो बात बात हुई, पापा सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग पापा उठे, पापा की कोई मीटिंग वगैरह थी, वो चले गए। शाम को वापस आए, तो जब पापा वापस आए तो दादाजी बोले कि आजकल रियाज कम किया है क्या?
अच्छा।
तो मैं देखता रह गया कि मतलब पापा के लेवल को, मतलब वो उनके बेटे हैं वो अलग है, लेकिन एक कंट्री के लेजेंड है।
बिल्कुल।
रात को वो 3-4 बजे वापस पहुंचे और अगले 12 घंटे रियाज नहीं हुआ, तो दादाजी का कमेंट आया कि रियाज कम कर लिया है क्या?
तो उन्होंने क्या किया फिर भजन साहब?
मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है और ऐसा क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए। ये जो एक जैसे आप कहें कि एक सोच है, यही रिफाइनमेंट लाती है, यही डेवलपमेंट एक बच्चे के जहन में लाती है कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है और क्या मुझे आगे करना है, तभी कुछ अपने सोसाइटी के लिए, अपने कंट्री के लिए, इस प्लैनेट के लिए हम कुछ कर सकते हैं।
अच्छा, कई दफा कहा जाता है कि फ्यूजन जो है कभी कभार कन्फ्यूजन बन जाता है, ये एक मुश्किल काम है, तो आपने खुद को कैसे बचाया खासतौर से सूफी म्यूजिक में?
देखिए, मैं फ्यूजन अपने आप में टर्म इतना मानता नहीं हूँ, मानता ये नहीं हूँ कि फ्यूजन नहीं एग्जिस्ट करता, ऐसा नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं कुछ भी बजा रहा हूँ वो बेसिकली एक कंपोजिशन है, और मैं उस कंपोजिशन को ट्रीट कैसे करता हूँ एज अ कंपोजर वो मेरे ऊपर है, तो वो एक कंपोजिशन है, उसको मैंने एक ऐसा ट्रीटमेंट दिया जिसमें कि मैंने उसे इस तरीके से मिक्स किया डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से या रिदम इंस्ट्रूमेंट से, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट से, तो वो अपने आप में एक कंपोजिशन तो जरूर है, लेकिन ये बात अलग रहे कि उसका कोई ना कोई जॉनर तो हमें डालना पड़ेगा, तो वो फिर फ्यूजन में आ जाता है। लेकिन जब मैं काम पहले कर रहा था इनिशियली, तो मेरे फादर साहब जैसे मुझे जब बताते थे तो वो कह रहे थे कुछ चीज़ें, उन्होंने मुझे अपने वो जो एक रूल बुक है वो समझाई, उन्होंने कहा जब भी कोई चीज़ करो, चाहे वो संतूर पे बजा के हो, वो गा के हो, वो कंपोजिशन के मीडियम से हो, वो ऑर्केस्ट्रा कोरल जो भी हो, कुछ ऐसे सवाल हैं जो मुझे खुद अपने आप से पूछने चाहिए और देखना चाहिए कि उनका मुझे आंसर मिलता है कि नहीं। अगर मिलता है तो एक लॉजिकल कंपोजिशन सामने आएगी, अगर नहीं मिलता तो उनको ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज वो एक चीज है जो कंफ्यूजन की ओर ले जाती है। तो एक क्वेश्चन है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो अगर मैं कंपोजिशन बना रहा हूँ तो वो कंपोजिशन क्या है जो मैं बना रहा हूँ, मुझे पहले खुद मालूम होना चाहिए कि मैं क्या बनाना चाहता हूँ, क्यों बना रहा हूँ, ये अपने आप में एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि रीजन क्या है बनाने का।
میں یہ کہنا چاہتی کہ یہاں آپ نے کسی ایک کمپوزیشن کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیے کہ کیسے.
دیکھیے جیسے کشمیر کا جب بویرین اسٹیٹ آرکیسٹرا کشمیر آیا تھا اور ہمارے ویسٹرن میوزک کے لیجنڈ ہیں زبین مہتا صاحب,
جی ہاں,
وہ کشمیر جب آئے تھے, جب احساس کشمیر ہوا تو وہاں پہ جو پہلی کمپوزیشن گئی جو میری کمپوزیشن تھی, اور میرے لیے بہت بڑا آنر تھا کہ زبین مہتا صاحب جیسی ایک شخصیت کے ساتھ میں اسٹیج پہ کنڈکٹ کر رہا تھا. انہوں نے میری کمپوزیشن پریزنٹ کی, یہ اپنے آپ میں ایک بہت آنر کی بات تھی. وہیں پہ کشمیر ایک اتنے جسے آپ کہیں پازیٹیو وے میں پوری دنیا کے سامنے آیا. وہاں پہ جو ہم نے پریزنٹیشن کی وہ بھی فیوژن ہی ہے. جہاں پہ کہ کشمیر کا فوک میوزک میرے جو کشمیر کے میوزیشنز ہیں اور جو میرا آرکیسٹرا ہے سوزو ساز, وہاں ہمارے میوزیشنز ٹوگیدر ود بویرین اسٹیٹ آرکیسٹرا, اور وہ آلموسٹ 100 میوزیشنز کا ایک آرکیسٹرا ہے, اور وہاں پہ جو کمپوزیشن ہوئی کہیں پہ بھی جو کشمیریت تھی وہ لوز نہیں ہوئی. ہر پیس میں چاہے وہ رباب, سارنگی, سنتور, تمبک, مٹکا کہیں سے بھی آ رہا ہو, یا پھر وائلن سے, چلو سے, ویولا سے, ڈبل بیس سے, ونڈ انسٹرومنٹ سے, براس سیکشن سے, کہیں سے بھی آ رہا ہو, وہ کشمیر ہی جھلکا رہا تھا. یعنی ہم فیوژن میوزک کی بات کر رہے ہیں, ہم فیوژن آف انسٹرومنٹس کی نہیں بات کر رہے.
درست.
تو جب ہم فیوژن میوزک کرتے ہیں تو میوزک بھی اس کا فیوژن ہونا چاہیے. تو جہاں پہ کہ ایک آرکیسٹرا تھا جو ایک ورلڈ ریناؤنڈ آرکیسٹرا ہے, اور وہ جب آ رہا تھا تو ہر ایک وہ مومنٹ میں کشمیر ہی جھلک رہا تھا. یہ اس ایک پیس کی بہت جسے آپ کہیں خوبصورتی رہی, اور جسے سب نے بہت سراہا.
تو آپ کا جو آرکیسٹرا ہے اس میں بہت سے میوزیشنز ہیں, اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ آپ نے ایسے فنکاروں کو جمع کیا جو کہ تھے تو اچھے فنکار مگر گمنام تھے. تو یہ شعوری طور پہ تھا ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا, سامنے لانا, یا اتفاق سے ایسا ہوا؟
میرے فادر صاحب ایکچولی بہت کام کیے ہیں کشمیر کے میوزیشنز کے لیے. میرے دادا جی بھی بہت کیے ہوئے, انہیں فادر آف میوزک بلایا جاتا ہے کشمیر میں.
جی.
جس کو چھوئیں گے وہ میرے یا تو دادا جی کا ڈسائپل ہے یا پاپا کا ڈسائپل ہے. تو وہ جو کام اتنا ہوا ہے, لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی مجھ سے ویسی ہی جڑی رہی ہیں ہمیشہ سے. مجھے یاد ہے جب میں اسکول میں بھی تھا, جب کشمیر سے میں دلی آیا 1990 کے بعد, تو جب بھی وہاں کے پاپا کیونکہ میوزک کانسرٹس کرواتے رہتے تھے, ان پریشانی کے دور میں بھی یہ ضرور تھا کہ کلچر کہیں دب نہ جائے یا اس میں کوئی میوزیشنز کو پریشانی نہ ہو, تو جتنا بھی پاسبل تھا پاپا کرتے تھے اور میوزیشنز کو بلاتے تھے. جب بھی وہ میوزیشنز آتے تھے وہ مجھ سے یہ ضرور کہتے تھے کہ آپ کو بھی کچھ کرنا ہے. تو جب میں چھوٹا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ مجھے ایک فائنینشیل سپورٹ دینا ہے, لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ پیسہ نہیں ہے, یہ ایک ایموشنل سپورٹ ہے, یہ ایک میوزیکل سپورٹ ہے جو مجھے دینا ہے. تو ایسا جو کہیں کہ لگتا ہے کہ اگر سچ میں پیراڈائز بلانا ہے تو وہاں کے ٹیلنٹ کی وجہ سے بلانا ہے, اکروٹ اور قالین کی وجہ سے نہیں.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے. آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, اردو.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے دنیا نا الٹ جاتی ہے
تو یہ بتائیے جب آپ اور آپ کے پاپا ایک اسٹیج پہ گا رہے ہوتے ہیں تو آپ روب میں رہتے ہیں یا کھل کے گاتے ہیں اور کھل کے بجاتے ہیں
جی ہمارے مجھے لگتا ہے جو یہ سینہ بسینہ جو ہمارا سسٹم ہے جس میں آپ اپنے گرو سے سیکھتے ہیں محض میوزک نہیں سیکھا جاتا اور یہاں پہ ہی خوبصورتی ہے کہ چاہے آپ کوئی بھی بات کہیں وہ ایک نوٹ لگا دیتے ہیں اور پھر انسان کو لگتا ہے کہ ابھی تک تو کچھ سیکھا ہی نہیں وہ اسی ایکسرسائز کا ایک نتیجہ نکلا کہ میں اتنا اپنے آپ کو پریپئر کرتا تھا کہ نہ جانے پاپا کیا بجا دیں گے لاسٹ میں تو وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ مجھے کہیں بھی ڈرانا چاہ رہے تھے لیکن وہ مجھے پرسنلی اتنا طاقت دے رہے تھے کہ میں بہت ساری چیزوں کو کر سکوں اور یہ بھی ہے کہ ہماری پرمپرا میں صرف ایک یہ سوچ ایسی نہیں ہے کہ آپ ایک آرٹسٹ پیدا ہوئے ہیں آپ اسٹیج پہ جائیں گے بجائیں گے اور شام کو گھر واپس نکل جائیں گے یہ سوچ نہیں ہے سوچ یہ ہے کہ آپ کا جو سنگیت ہے آپ کی جو موسیقی ہے وہ ایک ایسا میڈیم ہے جو آپ کو لوگوں سے کنیکٹ کرتا ہے لیکن وہ میڈیم یہ ہے کہ آپ اپنے سوسائٹی اور اپنے نیشن کے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ واپس جائیں تو جانے کے بعد دنیا یاد رکھے کہ کوئی ایک آدمی آیا تھا جس نے یہ کام کیا
مجھے معلوم نہیں کہ آپ کبھی غزل گاتے ہیں یا نہیں لیکن ہمارے سننے والوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو غزل کی بڑی شوقین ہے تو کچھ اگر سنا سکیں آپ ہمیں
میں آپ کو کچھ دو لائنیں ضرور سناتا ہوں میں کوئی اپنی ڈائری نکالتا ہوں مجھے ایک دم دھیان نہیں ہے ایک دو لائنیں میں آپ کی نظر پیش کرتا ہوں مجھے ٹھیک سے ابھی یاد نہیں ہے شہر کی یاد ہو تم اور خیال شام ہو تم شہر کی یاد ہو تم اور خیال شام ہو تم جو بن گیا ہے میرا جذب لب وہ نام ہو تم شہر کی یاد ہو تم اور خیال شام ہو تم
واہ بہت
دو لائنیں یاد
نہیں بہت شکریہ کہ آپ نے سنایا ہمیں تو بہت شکریہ ابھی آپ کا آپ نے اتنا وقت دیا اور جیسا کہ میں نے سننے والوں سے وعدہ کیا اب ایک پروگرام ہم لائیو کریں گے تاکہ لوگ آپ سے آپ کو چاہنے والے آپ سے پوچھ
جب آپ بتائیں میں حاضر ہوں اور سبھی جتنے بھی لسنرز ہیں سب کو میرا بہت بہت پیار اور ریگارڈ سبھی کو امید کرتا ہوں وہ ہمیشہ مجھ سے پیار کرتے رہیں گے اور میں اپنا سنگیت ان تک پہنچا پاؤں گا
بالکل اگر وہ آتے تو وہ پتہ نہیں کتنے خزانے آپ پہ لٹاتے اپنی محبت کے تو آئندہ پروگرام میں صحیح تو اس کے ساتھ ہی شہناز عزیز کو اجازت دیجیے خدا حافظ
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے